ममेव अंसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने जीव की सृष्टि अपने आनंद के लिए की, ताकि जीव भी आनंदित रहे। जब तक बेटा पिता की सेवा में रहता है, उनके आनंद में रहता है, तो पिता को भी सुख आनंद और बेटे को भी। ये बहुत सरल फॉर्मूला है, उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ये बात लेनी चाहिए। हम भगवान के आनंद के लिए हैं और इसीलिए हम भी आनंदमयी हैं, आनंदमयी अभ्यासात। लेकिन काल, कर्म और माया के बंधन से जीव दुखित होता है। आपन्न संस्कृतिम घोरम, जीव एक घोर संसार में आ गिरा है। क्यों? ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो आपको ये 7 दिन के सप्ताह में आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप कौन हो, आपकी रचना सृष्टि भगवान ने क्यों की, आप आनंदित कैसे हमें इसके लिए रह सकते हो। आपको काल, कर्म और माया का बंधन क्यों? ये संसार, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये चक्कर में क्यों फंस गए? भगवान कौन है, कहाँ है, भगवान का कर्तव्य क्या है, जीव का कर्तव्य क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के निरन्न मुक्त जीव आत्माएं कहाँ रहते हैं, निरन्न मुक्त और भगवान जहाँ रहते हैं वो देश कैसा है, भौतिक देश कैसा है। ये भौतिक देश में हम कैसे फंसे, क्यों फंसे, कैसे उससे हम मुक्त हो, ये सब आपको सिखाया जा रहा है। तो अगर आप ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हो तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन थर्ड क्लास स्टूडेंट हो, है ना, ज़्यादातर हम लोग ये सब चीज़ें बेदरकारी में निकाल देते हैं, गाफिले। लेकिन गंभीरता से लेना चाहिए सब चीज़ें। एक चीज़ गंभीरता से नहीं लोगे तो नहीं चलेगा। सारा जो अत से लेके इति तक, अथ मतलब शुरुआत से लेके इति मतलब अंत तक जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कोई कथा नहीं है, ये कोई रमूज या तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। आपको ज्ञान दिया जा रहा है बोर्ड पर, आपको लेक्चर दिया जा रहा है, आपको नोटबुक के साथ आमंत्रित किया जा रहा है, आपको ये पाठ्य पुस्तक आपके करिकुलम की टेक्स्ट बुक दी जा रही है। तो ये गंभीरता से लेना होगा ये हर चीज। अगर एक भूल हो गई जो हम पढ़ाते हैं उसमें एक भूल हो गई, आपका कल्याण नहीं होगा। सोचो, समझो। तो आज मैं वहां से शुरू करूंगा, कल जहां रुके थे, भगवान कौन है, और आज का जो विषय है कर्म का बंधन। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्मों का बंधन, ये दोनों हम टूक समय में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। भगवान कौन है, तो ये गंभीरता से ये सवाल आपकी बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करके फिक्स करना होगा। भगवान एक है, दो नहीं है, एक। और वो भगवान हम हमारी कल्पना से, काल्पनिक तार्किक बुद्धि से पैदा नहीं करेंगे। यथा मत ततपथ, जो मायावादी शुष्क वेदांतिस्ट या तो नास्तिकवादी जो हैं, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो कहोगे कि ये तो बहुत बड़े आस्तिक हो गए, आप बोलते हो कि नास्तिक हैं, नास्तिक है। यथा मत ततपथ फिलोसॉफी नास्तिकवाद है। यथा मत मतलब जो मैं, मेरी मति है, मेरी मति से, मेरी बुद्धि से जो भी भगवान का रूप में समझ लेता हूं वो भगवान है और वही मेरा पथ। आपकी बुद्धि बहुत पामर है, पामर अल्प बुद्धि, सो वेरी अल्प बुद्धि, वैसे बुद्धि है ही नहीं। हम सब बुद्धू हैं ऐसा आजकल ये शब्द मेरी जीवा पर ज्यादा आता है, क्यों कि यही हमारा चक्कर का कारण है। बुद्धि हमारे में कम है। कहोगे कि मैं साइंटिस्ट, एमए बीए, पीएचडी, मैं बुद्धू, यस। क्यों बुद्धू? क्योंकि ये जो भगवान, जो एक भगवान है, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। यथा मत ततपथ, पहले तो बुद्धि, पीएचडी, डॉक्टर्स पहले तो कहेंगे भगवान जैसी चीज ही नहीं है, पहले बुद्धू। तो हम बुद्धू हैं वैसा कौन कहते हैं? मैंने बताया था, श्रीमद् भागवत कहता है कि कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा। कलयुग में एक ही गुण है, दूसरे सब दुर्गुण। क्या दुर्गुण है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। सुमंद मति, हम सब सुमंद एंड मति, इसलिए यतमत ततपत। मैं जो समझता हूँ, जो मेरे मन में जो कल्पना करता हूँ, वो काल्पनिक जो भगवान है वही भगवान है। तो कल्पना से, आपकी कल्पना से भगवान पैदा नहीं होते। तो भगवान को समझने के लिए क्या प्रमाण है? तीन प्रमाण, शास्त्र, साधु और गुरु। शास्त्र कौन से हैं? वेद, पुराण, इतिहास, श्रुति, स्मृति, पंचरात्र, ये सब शास्त्र हैं। स्पेशली ये शास्त्र हैं, हमारा एक शास्त्र है, वो है गेयम गीता देवकी पुत्रम एवम। गाने लायक एक ही चीज, एक ही गायन है, दो गायन गाने लायक नहीं है, एक गायन, वो है गेयम गाने लायक गीता, गीत, गीता। किसका गीत? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का गीत ही गायन गाने लायक है। और शास्त्र भी एकम, शास्त्र भी कितने? एकम। शास्त्र भी एकम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र का गीत ही एक शास्त्र है, और कोई शास्त्र नहीं है। और एको देवो देवकी पुत्र एवं, और देव भी, देव देव जगत पते, भगवान भी, द गॉड भी एक है, वो है देवकी पुत्र। और धर्म भी एकम तस्य देव सेवा। धर्म क्या है? ये तस्य देव श्री कृष्ण की सेवा, ये धर्म है। और एको मंत्र, मंत्र भी एकम, एको मंत्र तस्य नामानि, मंत्र भी एक, वो श्री कृष्ण का नाम का मंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दो नहीं, एक। तो ये शास्त्र साधु और गुरुओं का प्रमाण हमने कल बात की थी ज्यादा समय न लेते हुए। ये तीन शास्त्र कहते हैं, स्पेशली भागवतम गीता, कृष्ण ही भगवान है। साधु कहते हैं रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, ओरिजिनल आचार्य ब्रह्मा, शिव, कुमार, लक्ष्मी, ओरिजिनल आचार्य है चार, ये सब कहते हैं कृष्ण ही एक मात्र भगवान है। शास्त्र साधु और गुरु, गुरु वो है जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, गुरु वो है जो आपको कृष्ण की पहचान करवाता है। ये गुरु की बात आगे कहेंगे कल परसों। तो ये भगवान है कृष्ण। अगर दूसरा भगवान पकड़ लिया तो ये आपका जो जन्म है वो वृथा जाएगा। मनुष्य भगवान नहीं है, साधु महात्माएं भगवान नहीं है, जीव भगवान नहीं है, जीव जीव है, साधु महात्माएं जीव है, ब्रह्मा जीव है, देवताएं जीव है, इंद्र वरुण चंद्र अग्नि 33 करोड़ देवताएं जीव हैं, भगवान नहीं है। जीव बलवान हो सकता लेकिन फिर भी वो जीव ही रहता। जीव आपको चमत्कार से कुछ सोना या अच्छा पति अच्छा पत्नी अच्छा कुछ दे सकता है, लेकिन वो ये जन्म के लिए या तो कुछ क्षणिक सुख के लिए। जीव कभी भी परमात्मा श्री कृष्ण नहीं हो सकता और नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एक है, वो है कृष्ण। ज्यादा बात न करते हुए ये समझ लो बहुत शॉर्ट में कि शास्त्र साधु और गुरु के प्रमाणों से श्री कृष्ण ही अकेले द गॉड भगवान है, ये फिक्स कर लो। अगर दूसरा कुछ फिक्स किया ये आपका सारा जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आए हो, वो भी दिल्ली जैसे पवित्र देश में, ऊंचा देश भारत, भरत खंड भूतलमा जन्मी जेने गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन एना मात पिता ने सफल करी एने काया रे। भरत खंड भू तड़मारे जन्मी जन गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन रे ना मात पिता ने सफल करी ने काया रे। जी भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्म लोक नाही रे। कृष्ण भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्म लोक, ब्रह्म मतलब सबसे ऊंचा स्वर्ग लोक, सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी ये भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है। ज्यादा सुख में भक्ति नहीं हो सकती, ज्यादा दुख में भी भक्ति नहीं हो सकती। दुख और सुख का समन्वय योग्य मात्रा में तब भक्ति आप कर सकते हो। तो स्वर्ग लोक में भी ये भक्ति नहीं है। आइए पीछे वापस, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण को फिक्स करके उनकी भक्ति ही हमारा भाग्य है। तो भरत खंड में हमने जन्म लिया तो ये जन्म गवाना मत। कैसे गवा सकते हो? अगर श्री कृष्ण भगवान को पहचाने नहीं यथा योग्य, द गॉड कौन है ये जाना नहीं, कुछ और समझ लिया तो आप यू विल मिस द बोट। श्री कृष्ण भगवान सबका उद्गम स्थान है, अनंत कोटि अवतार। उनके अवतार कितने हैं? अनंत अवतार। जितनी दरिया में लहरें हैं, दरिया में लहरें कितनी है? अनगिनत। उतने अवतार कृष्ण भगवान के, और ये सब अवतार मौजूद हैं वैकुंठ लोक में। हर वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक कमल की तरह है, आध्यात्मिक जगत विरजा की उस ओर, और हर कमल की पखुड़ी जो होती है वो है वैकुंठ लोक, जहाँ ये अवतार मौजूद हैं। नरसिंह, वामन, कच्छा अवतार, मच्छा अवतार, वराह अवतार, सब अवतार वहाँ मौजूद हैं, और भगवान की इच्छा से ये सब अवतार अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कुछ काम नहीं है। न तस्य कार्यम करणम, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उनका कोई कॉज नहीं, उनका कोई कार्य नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तद सम अभियुच्छति गच्छते। उनके बराबर कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। अधिगच्छते, उनके ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं, वो है कृष्ण। तो उनके ये अवतार है, अनंत कोटि अवतार, ये कृष्ण के हैं। उनके छह मुख्य अवतार हैं, कैटेगरी उनके प्रकार। एक प्रकार है पुरुष अवतार, कृष्ण भगवान का विस्तार बलदेव, बलदेव का विस्तार कर्णोदक्षय शंकरषण, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंसर, चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह जो भगवान के माधुर्य धाम में है, माधुर्य धाम गोलोक वृंदावन। दूसरा क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युमन, अनुदुर और वासुदेव। तो वो संकर्षण से दूसरा जो संकर्षण है, दूसरा क्वाड्रुपल चतुर्व्यूह, वो वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य धाम में है, और वो ऐश्वर्य धाम वाले संकर्षण में से तीन पुरुष अवतार। पहला पुरुष है कौन? कर्णोदक्षाय विष्णु, जो यहाँ बताए गए थे, कर्णोदक समुद्र में शयन करते हैं, जिनके शरीर के छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में फिर से वो कर्णोदक्षाय विष्णु का विस्तार, गर्भोदक्षय विष्णु दूसरा पुरुष अवतार। हर ब्रह्मांड में ये गर्भोदक्षय विष्णु है, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु फिर से विस्तारित होते हैं, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, और ये क्षीर सागर वाले विष्णु थ्रू ये सब अवतार अवतरित होते हैं। क्यों? कि जब देवताएं, सब देवताएं जब कष्ट में आते हैं, दुख होता है, तो क्षीर सागर के किनारे जाके वो क्षीरोदक्षय विष्णु को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। सहस्त्र शिरसः पुरुषः सहस्त्रपाद पुरुष सूक्त से, इसीलिए वहां होके सब अवतार आते हैं। लेकिन ये सब अवतार श्री कृष्ण भगवान के वैकुंठ धाम में मौजूद हैं, वहां होके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्षीरोदक्षय विष्णु ही सब अवतार का कारण है, कृष्ण सब अवतार के कारण है, कृष्ण भी वहां होते हुए आते हैं। इसीलिए ज्यादातर हिंदू लोग बोलते हैं कि ये विष्णु का अवतार है, कृष्ण भी, कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार नहीं है, विष्णु पुरुष अवतार है श्री कृष्ण के, अवतार के अवतार के अवतार के अवतार है। तो ये शास्त्रों में से आपको सोचना होगा, समझना होगा। क्षीरोदक्ष प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ हूँ और दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक ब्रिटिश एयरवे एयर इंडिया लेके मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क उतरता हूँ तो न्यूयॉर्कर्स मुझको कहते हैं एक प्लेन में से आए, प्लेन में से आए, लेकिन मैं भारत में था, प्लेन में बैठ के आया, प्लेन में से नीचे उतरा। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेन मेरा स्रोत है, तो क्षीर सागर के ऊपर रह के क्षीरोदक्षय विष्णु से रह के जब ये सब अवतार आते हैं, कृष्ण भी वहां से, राम भी वहां से, तो बोलते हैं कि विष्णु के अवतार नहीं, कृष्ण भगवान अपने धाम में मौजूद हैं, हम में इसके लिए। ऐसा नहीं कि उनका जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं, हमारा जन्म नहीं होता, उनका कैसे जन्म। न जायते न मृयते कदाचिन, हम जन्म नहीं लेते, हम मरण, हम मृत्यु को नहीं पामते, हमारा मरण नहीं है। तो भगवान का मरण कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ। भगवान अपने धाम में गोलोक वृंदावन में हमेशा मौजूद है। और क्यों वहां क्या करते हैं, एक काम, भक्तों के साथ वहां निरन्न मुक्त भक्त हैं, उनके पार्षद, उनके साथ लीलाएं करना, एकमात्र काम। लीला का मतलब आनंदमय क्रीड़ा है, आनंदमय क्रिया या क्रीड़ा, आनंदमय, आनंद को वर्धन करने वाली क्रीड़ा है, उनको बोलते हैं लीलाएं। तो ये भगवान के अवतार हैं, पुरुष अवतार, सक्तावेश अवतार। भगवान श्री कृष्ण किसी जीव को अपनी शक्ति का संचार करके यहाँ भेजते हैं, जैसे ये श्रील प्रभुपाद सक्तावेश अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए उनको शक्ति दे के यहाँ भेजे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रे ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान का एक किरण है जो भक्ति का प्रचार करने आए, श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने। सक्तावेश अवतार, जैसे व्यासदेव, नारद मुनि, पृथु महाराज, बुद्ध, ये सब सक्तावेश अवतार, शंकराचार्य, सब बड़े बड़े आचार्य हमारे हैं, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार स्वामी इत्यादि, सक्तावेश अवतार। सक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, राम कृष्णा वगैरह वगैरह, ये लीला, सुंदर लीलाएं करने, लीला छोड़ के गए हमारे लिए, ताकि हम भगवान की ओर आकृष्ट हो। लीला अवतार, मनवंतर अवतार, हर मनवंतर में मनु आते हैं, उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं, मनवंतर अवतार। गुणा अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर विश्व में, हर ब्रह्मांड में तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन होते हैं। और कितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुणा अवतार है। विष्णु भगवान सत्वगुण से टच, सत्वगुण का टच रहता है, नहीं कि सत्वगुण में है, गुणातीत है विष्णु भगवान, सब गुणों से पर है, लेकिन उनके संबंध में है, इसलिए गुणा अवतार। शंकर भगवान तमोगुण के टच में है, नहीं कि वो तमोगुण में है, इनको गुणा अवतार कहते शंकर। और ब्रह्मा रजोगुण, रचना करनी है तो रजोगुण होना चाहिए, भागा दौड़ी तभी रचना होती है, तो ये रजोगुण के अवतार है, रजोगुण के टच में है, तो उसको बोले गुणा अवतार। ये सब अवतार, अनंत कोटि अवतार, ये कृष्ण के हैं, कृष्ण अवतार ही हैं। सोचो महानता, गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट ही इज, ये सोचो। और ये कृष्ण ही हो सकते हैं, कोई बाबा बापू नहीं हो सकते, कोई जीवात्मा नहीं हो सकता, कोई देवता नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान की पोजीशन शास्त्र साधु और गुरुओं से समझो, यत मत तत पथ नहीं, अपना स्पेक्युलेशन नहीं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, उनके अवतार तीन तत्व हैं, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व और प्रकृति तत्व, चार तत्व। और ये चारों तत्व अलग ही रहते हैं, जीव कभी भी विष्णु तत्व नहीं बन सकता। कहते हैं कई नास्तिक लोग आपको सिखाते हैं, नर जो निज करणी करे तो नर का नारायण हो जाए। नर अगर बहुत अच्छा कार्य करता है तो नर का नारायण हो जाता, नहीं होता। चाहे जितना भी अच्छा कर्म करे, जीव जीव रहता है और भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। श्री कृष्ण कभी भी जीव नहीं बनते। अगर जीव बनते हैं तो माइन्यूट पार्टिकल्स, उसमें जो जो जीव, उसमें से जीव उनका विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश, भिन्न अंश, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और ये प्रकृति शक्ति जो है, ये तत्व है, वो भी भिन्न है भगवान से, अलग है। प्रकृति की शुरुआत, भगवान का पहला विस्तार प्रकृति का, वो राधा रानी है। गोलोक वृंदावन में राधा रानी का विस्तार है, राधा रानी का साम्राज्य है, राधा रानी वहां की अधिष्ठाता, नियंत्रित, नियंत्रण करने वाली शक्ति, जिसको हम योग माया कहेंगे, जिसको हम भगवान की आह्लादिनी शक्ति कहेंगे। गोलोक वृंदावन में राधा रानी आच्छादित है माया के रूप में, और राधा रानी का विस्तार है लक्ष्मी दूसरा, और करोड़ों लक्ष्मियां हैं। तो ये लक्ष्मी विस्तरित होती है ऐश्वर्य धाम में, वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में राधा रानी, और ऐश्वर्य धाम वैकुंठ धाम में लक्ष्मी शक्ति है, प्रकृति है। और लक्ष्मी से विस्तार होता है कैलाश में, शंकर भगवान की पत्नी के रूप में पार्वती, अथवा पार्वती, और पार्वती का विस्तार है दुर्गा जे भौतिक जगत में, वो कैलाश में पार्वती। पार्वती का आगे वाला विस्तार है शेरों वाली माता, वैष्णवी, कन्याकुमारी, ये सब नाम है शक्ति के भौतिक जगत में। ये कृष्ण भगवान की भौतिक शक्ति है, भौतिक है ये सारा भौतिक ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है शेरों वाली माता, ये भौतिक जगत में शक्ति है। तो ये भगवान का शक्ति विस्तार, लेकिन भगवान शक्तिमान है, वो मत भूलो। शक्ति शक्तिमान, माता पिता, खिचड़ा मत करना, खिचड़ा सब सब भगवान है, सब देवी देवता है भगवान, खिचड़ो मत करो, खिचड़ी मत पकाओ। सब कुछ अलग रहता है, जीव तत्व अलग रहता है, शक्ति प्रकृति तत्व अलग रहता है, विष्णु तत्व अलग रहता है, शिव शंकर भगवान शिव तत्व अलग रहता है जो मार्जिनल है, और उनके जगत जगत उनका विस्तार, उनका धाम गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा जो धाम है, जगत है गोलोक वृंदावन, जो कमल के बीच में के वाला जो भाग है येलो, और बाग में पंखुड़िया जो वैकुंठ लोग जो बीच वाला भाग से नीचे, वो विष्णु लक्ष्मी नारायण, वहाँ राधा कृष्ण, और वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण कृष्ण का विस्तार, ऐश्वर्य धाम वो माधुर्य धाम, और ये वैकुंठ धाम के नीचे कैलाश शंकर भगवान का देश धाम, जहाँ पार्वती शंकर पार्वती, उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है जो निराकारवादी भगवान, ये दूसरा एक सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। निराकारवादी जो है ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में, ये कैलाश के नीचे ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के नीचे करणोदकशयी, करणोदक समुद्र, कारण समुद्र जो सबका कारण है, जिसमें करणोदकशयी विष्णु शयन करते हैं, जिसके शरीर में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, कॉजल ओशन, जिसको हम विरजा कहते हैं, विरजा, और विरजा के इस पार सारे भौतिक जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, तो ये डिफरेंस अलग अलग धाम है, और हर एक ब्रह्मांड में नरक है, स्वर्ग है, पृथ्वी है बीच वाला, और पृथ्वी बीच वाली एक एक ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी बीच में है, ऊपर स्वर्ग, पृथ्वी के ऊपर भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, टॉप मोस्ट स्वर्ग, तपलोक, सत्यलोक, ये स्वर्गलोक है। और ये स्वर्गलोक बताया गया कि स्वर्ग में भी जाते हुए जीव वापस लौटेंगे। क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लवन्ते। और नरक लोग जो पृथ्वी से नीचे है, पाताल, रसातल, तलातल, ये सब सब नीचे लोक है, और आखिरी लोग है पाताल, और पाताल का, पाताल के नजदीक है नरक लोग जहाँ ये सब जीव जाते हैं और नरक की वेतनाएं भोगते हैं, भोगते हैं। नरक लोग के बगल में, बाजू में है पितृलोक, लोग जाना चाहते हैं, पितरों को जो आ सकते हैं वो पितृलोक जाते हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम। आपको कहाँ जाना है, भगवान खुले खुला बोल रहे हैं, चार चीजें बता रहे हैं। यान्ति मुझको, मेरे पास आना है तो भूत की बात मत करो, पितृ की बात मत करो, स्वर्ग की बात मत करो। यान्ति देव व्रता देवान, जो देवों की पूजा करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम वापिस आते हैं। भूतानि यान्ति भूत, भूतों की पूजा करते हैं भूतों को पामते हैं। पितृ यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों का उपासना करते हैं पितृलोक में जाते हैं, नरक के नजदीक डाउन नीचे। और यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मेरी उपासना करते हैं गोलोक वृंदावन में आते हैं, जहां गए हुए जीव कभी भी वापस नहीं आते, जहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी प्रकार का जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग कुछ दुख नहीं। तो कहां जाना है फिक्स करो, गोलोक। तो गोलोक के बनो, यहां से गोलोक, गोलोक जाना है तो श्री कृष्ण भगवान का संसार करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन में पिछले दरवाजे खड़ा रहूंगा, आपकी एंट्री पीछे से करवा दूंगा, लेकिन हरे कृष्णा, लेकिन यहां से तैयारी करनी होगी। 16 माला ए डे, 4 नियम, नो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन, 4 नियम और 16 माला खबरदार करना है, ये तैयारी है। इससे हमारा स्वभाव गोलोक सा हो जाएगा, हमको किसी के घर किसी के देश जाना है तो हमको वो देश, वेल यू आर इन रोम डू व्हाट रोमन डज, सो रोमन की तरह हमको यहाँ से ही तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं कि वहाँ जाएंगे रोमन में, रोम में जाएंगे तो रोमन बन जाएंगे। यहाँ से तैयारी, वीजा लो, ड्रेस पैंट शर्ट, दुबई जाना है तो ये गेरुआ धोती कुर्ता नहीं चलेगा, आपको मुस्लिम ड्रेस, मैं गया था अभी, मुस्लिम ड्रेस पहनना पड़ा। तो जहां जाना है उनकी तैयारी करनी ही पड़ेगी, और उन जैसा स्वभाव करना ही पड़ेगा, भगवान जैसा दैवी स्वभाव, दैवी गुण हमें लाना ही पड़ेगा, तभी दैवी दिव्य लोक में हमारी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। आप गंदे हो और गंदे गंदे भगवान के पवित्र देश में जाना चाहते हो, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आपका पवित्र घर है और मैं गंदगी लेके घुस जाऊं, मुझको आप वहां घर में घुसने दोगे? कौन घुसने देगा? कोई घुसने देगा? तो ये हृदय अपवित्र है, उनको चेत दर्पण मार्जनम मार्जन करना पड़ेगा। ये हृदय का मार्जन, मार्जनम मार्जन किसका करते हैं? गंदी गंदे बर्तन होते हैं तो उनका मार्जन करते हैं, चक चकाचक इनको चक चकित करते हैं, है ना, मार्जन। तो हमको गोलोक वृंदावन भगवान के धाम अगर जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली तैयारी करने में आपको क्या करना पड़ेगा? 16 माला ए डे विल मेक योर, ये रमा माता जी जानती है, करती है ना, वेरी गुड। कितनी माला कौन करेंगे? देखो सबको यहां भौतिक जगत में रहना है, कितना कितनी आसक्ति अटैचमेंट है ना, गंदगी में रहना, ये गंदगी है, गंदगी ये शरीर गंदगी है। लोग समझते मेरा शरीर कितना सुंदर कितना अच्छा, लेकिन हर होल में से हर होल में से गंदगी निकलती है, हर हर ये शरीर गंदगी का घर है और उनमें इतनी आसक्ति, हमको ये नहीं करना है। 16 माला खबरदार होके भगवान श्री कृष्ण की 16 माला करो तो कृष्ण धाम पामोगे। चेत दर्पण, आपका दर्पण चेत रूपी दर्पण, मन रूपी हृदय रूपी दर्पण क्लींस, ये हृदय शुद्ध होगा और उसमें कृष्ण प्रेम जागृत होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य करुणाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। शुद्ध प्रेम भगवान का आपके हृदय में जागृत होगा, कब? जब 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की करोगे, तो हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, कृष्ण दौड़ते हुए आपकी ओर भागते हुए आएंगे। कृष्ण आकर्षिणी च, कृष्ण भगवान को आकर्षित करोगे, तो ये गोलोक जाने की टिकट है। पे द प्राइस, प्राइस प्राइस मतलब 4 नियम और 16 माला। अगर 4 नियम न हो तो 16 माला तो करना शुरू कर ही दो, पहले 16 माला, पहले क्वांटिटी बाद में क्वालिटी। 16 माला हर एक व्यक्ति जो यहां मौजूद है 16 माला शुरू करनी ही चाहिए, ये गोलोक वृंदावन जाने की टिकट है। तो ये भगवान के अवतार हैं, भगवान का ये धाम है, भगवान का ये विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण को समझो। कोई भी देवी देवता शास्त्रों में बयान नहीं कि वो भगवान है। अभी इस संसार में कहीं कहीं साधु महात्माएं भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उनके शिष्य लोग, लेकिन कौन से शास्त्र में कहा है कि ये भगवान होंगे, ये बाबा बापू या ये जीव या ये शिव जो भी हो, शास्त्र को प्रमाण बताओ पहले कि ये भगवान है। और कौन सा शास्त्र वो बाबा बापू फॉलो करते हैं? कोई मुसलमान को पूछता है, कोई मुसलमान सूफी समझते हो ना, सूफी मतलब ना हिंदू ना मुस्लिम, उनको पूछते हैं। तो ये पूजा तमोगुणी पूजा है, मैं मुझको ये मिल जाए मुझको ये मिल जाए, अरे 100 साल तक मिलेगा उसमें फायदा क्या होगा? हमको तो सनातन काल की सोचनी है, सनातन काल तक का सोचना है, शॉर्ट साइट नहीं। तो है श्री कृष्ण। आइए आज का थोड़ा टॉपिक ले लेते हैं, समय देना पड़ेगा, 7 दिन ही तपस्या करनी है और कितनी करनी है, और साथ में भी अभी तो 3 दिन बच गए। वैसे तो जब हम आए अशोक विहार में सप्ताह करने तो आपको वेकेशन लेना चाहिए, गंभीर बात है, वेकेशन हर संस्था में ये बात होती है, हर संस्था में वेकेशन लेना चाहिए। अगली बार जब हम कथा करने आएंगे तो आप सबको क्या लेना है, क्या लेना है? वेकेशन। खाना पकाना बंद। बोलो यहाँ शाम को खाना होगा, है ना? सबको ले आओ घर में से वेकेशन। और सुबह 3 घंटा और शाम को 4 घंटा कथा सुनना चाहिए। 7 घंटा फुल डे काम हो गया क्या? नहीं, बाद में खाना थोड़ा आराम। सबको सुबह भी कथा, शाम को भी कथा। ये आपका जीवन का सबसे महत्व समय है वेकेशन। मौज मजा करने के लिए वेकेशन लेते हैं, बच्चों को चलो भाई वेकेशन में ले जाएं, लेकिन ये सही वेकेशन है? तो अगली बार आप वेकेशन लोगे 7 दिन का परफेक्ट वेकेशन, ठीक है? अभी से कह दो घर में, कर्म क्या है? अकर्म ही बोधव्यम, कर्म ही बोधव्यम, विकर्म ही बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। ये कर्म विकर्म अकर्म को समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा नहीं फिर भी कोशिश करो। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, समझ में जल्दी नहीं आने वाली। गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति गहन है। तो ये जीव कर्म करने के बिना एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। न च तस्मात् क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। एक क्षण भी जीव क्रिया करने के बिना, कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। फोर्स्ड, जैसे आपको दिखाया गया था, एक दबाव है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको कर्म करने में दबाव डालता है। सत्व रजस तमस, ये 3 गुण आपको जबरदस्ती से कर्म करवाता है, जबरदस्ती से। 1 मिनट भी कर्म करने के बिना हम नहीं रह सकते। तो कर्म करना ही पड़ेगा, तो कौन सा कर्म करें इसमें बुद्धि लगानी चाहिए। यू कैन नॉट स्टॉप कि भाई चलो मौन व्रत, नहीं, बोलना ही पड़ेगा। 1 साल 10 साल 15 साल बाद में बोलने लगोगे, ये उम्र नहीं बोलोगे तो अगली उम्र में बोलना पड़ेगा। ये सब कर्मों को छोड़ दो, नहीं। भगवान अर्जुन को पहले क्या, कर्म कर, क्षत्रिय है क्षत्रिय का धर्म बजा। कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन बुद्धि यह है कि कौन सा। तो ये आपको समझाया गया है कौन सा कर्म करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। कर्मों का बंधन हमको लगता है, इसलिए वो कर्म करो जिसका कोई बंधन ना हो। भगवान की भक्ति ये अकर्म है, भगवान की भक्ति में कोई बंधन नहीं है। भगवान की भक्ति करोगे मुक्त हो जाओगे, मुक्त होगे गोलोक वृंदावन में, तदगत्वा न निवर्तन्ते, वापस आने की जरूरत नहीं है। तो ये कर्म अकर्म, और जो भी कर्म सत्कर्म या दुष्कर्म करोगे उनका बंधन लगेगा। मीरा गाती है, कर्मनो संगति रण मरु कोई नथी, कहती है कि कर्म का संगाथी, मेरा कर्म का साथी कोई नहीं बनता। एक गाय ना दो बछड़ा रे, मीरा कहती है एक गाय के 2 बछड़े, एक शिवजी का पोठिया बना, शिवजी का बैल बना, लोग उनको पूजते हैं, और दूजा गांचीड़ा के घेर, तेली के घेर तेल पीसता है, घूमता रहता है 12 घंटा, एक गाय के 2 बछड़े और एक पर्वत के 2 पत्थर, एक टुकड़ा पर्वत का प्रभु जी की बनी मूर्ति। पूजते हैं प्रभु जी को, भगवान साक्षात भगवान है। पूजा 56 भोग, आरती श्रृंगार सेवा हो रही है, और दूजा पत्थर का टुकड़ा सेम पर्वत का धोबीड़ा के घाट, धोबी उनके ऊपर झिकता है ना, कपड़े झिकता है। ये कर्मों की गति है। दो भाई, एक पैसों की कमी नहीं और दूसरा खाने की बिल्कुल कमी, खाने की तकलीफ है, तो ये कर्मों की गति है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी इंट्रिकेसी, कहीं भागवत की एक स्टोरी है, कहने का समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ो, किंग नृग, नृग राजा गायों का दान करता था हर रोज, 10,000 या 10,00,000 गाय एक ब्राह्मण को दे दी एक दिन, हर रोज करता था। तो एक गाय वापस आई, उसके ऊपर निशान रहते थे, हरा निशान हाथ का, तो एक वापस आके फिर से दूसरी गायों में मिक्स हो गई। ब्राह्मण को गाय दान में दे दी, वापस नहीं ले सकते, लेकिन आ गई। राजा ने, राजा कोई वापस नहीं लाया, लेकिन वो गाय फिर से जब दूसरे ब्राह्मण को दान दी तो वो गाय चली गई दूसरे ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण दोनों लगन झगड़ने लगे, ये मेरी गाय है, मेरी गाय है। वो बोलता है मेरी है, मुझको दी है। तो राजा कहते हैं भाई आप छोड़ दो ये बात, ये गाय को छोड़ दो, ये गाय के बदले में आपको दूसरी 10,00,000 गाय देता हूं, झगड़ा छोड़ो। लेकिन नहीं, दोनों ब्राह्मण मेरी मेरी मेरी, और राजा बीच में मेरा मेरा बीच में खींच, राजा की खींचातानी हो गई। राजा गिरगिट बना। वो तो उनका सद्भाग्य था कि भगवान की द्वारिका नगरी में गिरगिट बना, कुएं में कई सालों तक। बाद में भगवान के पुत्र पपौत्र खेलते हुए गेंद से, तो गेंद गिर गई, गेंद लेने गए तो एक गिरगिट वहां दिखाई दिया। तो छोटे छोटे बालक भगवान को बुला के लाए पिता को कि ये गिरगिट, तो भगवान ने टच किया गिरगिट का, तुरंत गिरगिट में से किंग नृग बन गए, उनकी मुक्ति हो गई, भगवान का धाम मिल गए। लेकिन कर्मों की गति तो दान, उनने पुण्य काम किया लेकिन गिरगिट बनना पड़ा। गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र का हर रोज गान करना चाहिए, ताकि सारे कर्म जल के भस्म। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से कर्म सारे जल जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, कर्माणि निर्दहति, कर्मों की गति, कर्मों का फल दहन हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, एक नाम लेने से करोड़ों खरबजों जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कर्माणि नहीं, तो 16 माला करने वाला है, उनका पुण्य, उनका कल्याण कितना बड़ा होगा। 16 माला ए डे, कितनी माला करनी चाहिए? 16। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ये कर्म आपके जल जाएंगे। तो ये है कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब कि जो शास्त्रों में आपको निषेध किया गया है, निषेध मत करो, वो कर्म करते हो तो उसको बोलते हैं विकर्म, और वो कर्म करने से पाप लगता है। और शास्त्रों में कहा गया यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, वो कर्म को बोलते हैं कर्म, जिससे आपको क्या मिलता है? पुण्य। पुण्य से क्या मिलता है? स्वर्ग। और अकर्म से क्या मिलता है? भगवान और भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, जहां सुख ही सुख है, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो अकर्म का फल है। सोचो कहां जाना है। अगर गोलोक वृंदावन जाना है 16 माला ए डे, कितनी?
16।
कौन सा मंत्र?
हाँ,
हरे हरे ये मंत्र का गान, सोलह माला डे। तो है शॉर्ट में कर्म, नरक, स्वर्ग और गोलोक वृंदावन। और नरक का बयान आपने सुन लिया, कल सुनना चाहोगे तो सोलह माला आप करो सब, आहिस्ते आहिस्ते आखिरी दिन में सबको, जो भी आए हैं सबको सोलह माला करनी है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सोलह माला ये 10% आपका जीवन का समय है, वो भगवान को अर्पित करना ही चाहिए। उससे आपका जो आपकी चेतना है शुद्ध हो जाएगी। और विसंते तद अनंतरम, भगवान के धाम में पहुंचने की तैयारी हो जाएगी। विसंते जाओगे तद अनंतरम, भगवान के धाम में जाओगे। गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।